नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जेएस फोगाट और स्वागत है आपका एक बार फिर से पॉडकास्ट चैनल चर्चा में। दोस्तों, आज का हमारा विषय है नेशनल हेराल्ड केस, तो सुनते रहिए पॉडकास्ट चैनल चर्चा में। कांग्रेस को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने पार्टी के मुखपत्र नेशनल हेराल्ड के दिल्ली स्थित दफ्तर को खाली करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने वाली एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL की याचिका खारिज कर दी है। AJL पर आरोप था कि पिछले 10 साल से इमारत में नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशन का काम नहीं हो रहा था, इसलिए हाई कोर्ट ने 2 सप्ताह में हेराल्ड हाउस खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि AJL के लिए हाई कोर्ट की डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का विकल्प अभी बाकी है। नेशनल हेराल्ड केस में मुख्य आरोपी श्रीमती सोनिया गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी हैं। दोनों ही नेता इन दिनों जमानत पर बाहर हैं। यह केस मुख्य रूप से 2 बिंदुओं पर आधारित है। नंबर 1, वर्ष 2011-12 के इनकम टैक्स फाइल की जांच के लिए दोबारा खोलना, और नंबर 2, सरकारी संपत्ति को गैर कानूनी तरीके से हथियाने का षड्यंत्र रचना। तो आइए जानते हैं इसमें सच्चाई क्या है। कर विभाग के अनुसार राहुल गांधी के वर्ष 2011-12 के कर आकलन को फिर से खोलने का फैसला किया गया, क्योंकि उन्होंने उसमें यह जानकारी नहीं दी थी कि वह 2010 से यंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के निदेशक थे। विभाग के अनुसार राहुल की यंग इंडिया कंपनी में जितनी हिस्सेदारी है उसके मुताबिक उनकी आय 154 करोड़ रुपए होती है, न कि 68 लाख रुपए जैसा कि उन्होंने अपनी ITR में पहले आकलन किया था। आयकर विभाग तत्कालिक मामले में आयकर कानून की धारा 147 को लागू करता है। इस धारा के तहत उस इनकम को टैक्स के दायरे में लाया जाता है जो वास्तविक आकलन के दौरान शामिल नहीं की गई थी। कर विभाग पहले ही यंग इंडिया को आकलन वर्ष 2011-12 के लिए 249 करोड़ 15 लाख रुपए का नोटिस जारी कर चुका है। वहीं मामले के सभी 7 आरोपियों ने उन पर लगे आरोपों को खारिज कर दिया है। आरोपी हैं श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्री मोतीलाल वोरा, श्री ऑस्कर फर्नांडिस, सुमन दुबे, सैम पित्रोदा और खुद यंग इंडियन कंपनी। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाई कोर्ट से राहुल गांधी को निराशा हाथ लगी। राहुल गांधी ने यंग इंडियन कंपनी में उसके डायरेक्टर होने का खुलासा नहीं करने के लिए आयकर विभाग द्वारा 2011-12 में उनकी आय का आकलन दोबारा शुरू करने के निर्णय को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने इस मामले में कांग्रेस अध्यक्ष को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति एस रविंद्र और न्यायमूर्ति AK चावला की पीठ ने राहुल गांधी के वकील की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें विभिन्न मीडिया संगठनों पर इस संबंध में समाचार प्रकाशित करने का प्रतिबंध लगाने की मांग की गई थी। यानी राहुल गांधी ने इस याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले से मीडिया को दूर रखा जाए, उसके बारे में किसी की खबर नहीं छापी जाए। यानी राहुल गांधी चाहते थे कि उनके भ्रष्टाचार के मामले को किसी मीडिया में नहीं दिखाया जाए, किसी समाचार पत्र में नहीं छापा जाए, ऐसा उन्होंने अदालत में अनुरोध किया था जो न्यायालय ने ठुकरा दिया। इस संबंध में BJP नेता और केंद्रीय मंत्री JP नड्डा ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। श्री नड्डा ने ट्वीट करके कहा, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर देश में डर का माहौल बनाने वाले अपने कर्मों के सच के बाहर आने पर इतना डर गए कि किसी भी माध्यम से मीडिया की आवाज़ का गला घोटना चाहते हैं। राहुल गांधी जी को बताना चाहिए कि आखिर मीडिया की खबरों से इतना परेशान क्यों हैं। BJP प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी जब कोर्ट में गए थे तो उन्होंने मांग की थी कि कोर्ट मीडिया को हिदायत दे कि वह नेशनल हेराल्ड केस में रिपोर्टिंग ना करें। उन्होंने कहा कि 5,000 करोड़ रुपये का गबन करने के लिए गांधी परिवार ने बड़ा षड्यंत्र रचा और आज नकाब उतर गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश को गुमराह कर रहे हैं। संबित पात्रा ने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी का प्रथम परिवार भ्रष्टाचार में पूरी तरह से डूबा हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोतीलाल वोरा ने शनिवार को बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी पर आरोप लगाया कि वह सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देकर नेशनल हेराल्ड केस की सुनवाई को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वोरा की तरफ से एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट समर विशाल के सामने पेश हुए वरिष्ठ वकील आरएस चीमा ने कहा कि स्वामी ट्वीट कर आरोपियों को चरित्र हनन कर रहे हैं। उल्लेखनीय है कि श्री स्वामी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी और अन्य के खिलाफ निजी आपराधिक शिकायतें दर्ज कराई हैं। स्वामी ने वोरा पर आरोप लगाए थे कि वह तुच्छ आवेदनों के जरिए कोर्ट का समय बर्बाद कर रहे हैं। वहीं एक आवेदन में वोरा ने कहा कि उन्होंने बार बार यह नोटिस किया कि स्वामी मामले की दैनिक सुनवाई को लेकर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट डालते हैं, जिसका मकसद आरोपियों को अपमानित करना है और कोर्ट की मानहानि करना है। क्या है नेशनल हेराल्ड मामला, यह जानने के लिए हमें अतीत में जाना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड उन अखबारों की श्रेणी में है जिसकी बुनियाद आज़ादी के पूर्व पड़ी। वर्ष 1938 में देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के पैसे से एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी बनाई, जो इंग्लिश में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज़ नाम के अखबार छापती थी। आज़ादी के बाद देश के विभिन्न शहरों में इसे सस्ती दरों पर ज़मीन उपलब्ध कराई गई, या कहिए कि ना के बराबर कीमतों पर देश के अलग अलग शहरों में काफ़ी ज़मीनें आवंटित कर दी गई। क्योंकि सरकार भी कांग्रेस की थी और AJL भी कांग्रेस की थी, इसलिए कोई आपत्ति नहीं आई जमीन वगैरह आवंटन करने में इस कंपनी को। AJL को रियायती दरों पर काफ़ी लोन भी दिया गया, जिसके चलते कंपनी की संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई। इसी के तहत एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड यानी AJL को 1962 में दिल्ली के बहादुर शाह जफर मार्ग पर लगभग 15,000 स्क्वायर फीट जमीन 5 मंजिला इमारत बनाने के लिए बेहद सस्ती कीमत पर दे दी गई, जिस पर यह शर्त लगाई कि इसके ग्राउंड फ्लोर में प्रेस चलाई जाएगी और बाकी 4 मंजिलों पर कंपनी के ऑफिस होंगे। जनवरी 1967 में इसी संदर्भ में एक लीज डीड भी बनाई गई, जिसके मुताबिक AJL इसमें समाचार पत्र ही चलाएगी और अन्य किसी व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन नहीं करेगी। यानी इसमें सिर्फ प्रेस ही चलाई जा सकती है, मीडिया का कार्य ही हो सकता है, ऐसा उस लीज डीड में लिखा गया था। लेकिन 7 जनवरी 2013 को तत्कालीन मनमोहन सरकार ने इन नियमों में बदलाव कर दिया, क्योंकि उस वक्त भी कांग्रेस की सरकार थी, तब भी सब कुछ बहुत आसान था और AJL पर भी गांधी परिवार का अधिकार हो चुका था। बदले हुए नियमानुसार बेसमेंट में AJL की प्रेस होगी और किसी भी एक फ्लोर पर उनका ऑफिस होगा, बाकी अन्य फ्लोरों को किराए पर दिया जा सकता है। यानी इस संपत्ति पर व्यावसायिक गतिविधियां को पूरी छूट दे दी गई। फिर यह भी पता चला कि वर्षों से यहां कोई अखबार चलता ही नहीं, बल्कि सारी संपत्ति किराए पर दे दी गई है। बड़े बड़े ऑफिसों के, कॉरपोरेट ऑफिसों के यहाँ पे दफ्तर खोले गए, जिनसे भारी भरकम किराया वसूल किया जाता था और यह किराया सिर्फ एक ही व्यक्ति की जेब में जाता था और वह है तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी और अब के अध्यक्ष श्री राहुल गांधी। परंतु यहाँ विरोधाभास ये है कि जो जमीन सब्सिडी पर एक समाचार पत्र को चलाने के लिए लीज पर दी गई थी और जो किसी व्यक्ति विशेष की ना होकर सरकारी संपत्ति थी, उसको गलत तरीके से हड़प कर कमर्शियल यूज करना न केवल भ्रष्टाचार है, बल्कि एक कानूनी जुर्म भी है और कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व इस जुर्म को बरसों से करता आ रहा था। अक्टूबर 2016 में केंद्र के भूमि विकास कार्यालय ने AJL को नोटिस जारी किया और कहा कि 10 साल से इस परिसर में कोई प्रेस का काम नहीं हो रहा है और इसका पट्टा समझौते यानी लीज डीड का उल्लंघन करके केवल वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो क्यों ना इस डीड को ख़त्म करके ज़मीन वापस ले ली जाए। लेकिन एजेल की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। फिर अक्टूबर 2018 में केंद्र और भूमि विकास कार्यालय LDO ने लीज तोड़ने के जुर्म में एजेल को 2 हफ्तों में परिसर खाली करने का आदेश दे दिया। इस आदेश के बाद एजेल ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर सभी आरोपों को खारिज कर दिया, यानी उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए थे वो उन्होंने खारिज कर दिए तथा कहा कि कार्रवाई राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित है। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने 56 साल पुराना पट्टा समाप्त करने के केंद्र के 30 अक्टूबर के आदेश को चुनौती देने वाली अपील को खारिज करते हुए अपना फैसला सुनाया कि एजेल को 2 सप्ताह में ITO स्थित परिसर खाली करना पड़ेगा। उसके बाद अनधिकृत कब्जाधारियों को भी बेदखल करने की प्रक्रिया शुरू होगी। अपने फैसले में न्यायमूर्ति श्री सुनील गौड़ ने कहा कि कहीं ऐसे तथ्य नहीं मिले जो राजनीतिक दुर्भावना का इशारा करते हों। न्यायमूर्ति ने एजेल से यह भी पूछा कि इस समाचार पत्र का सर्कुलेशन क्या है, कितनी कॉपियां छपती हैं, कौन कौन से शहरों में बांटा जाता है, परंतु एजेल की तरफ से इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। वैसे यह सवाल मैं आपके सामने भी रखता हूँ कि क्या कभी आपने नेशनल हेराल्ड नाम के किसी अखबार को पढ़ा है या सुना है? अदालत भी यही पूछ रही है कि ये बताएं कि आपका अखबार कहाँ कहाँ पढ़ा जाता है। कुछ तो बताएं, क्योंकि आपको दिल्ली में इतना बड़ा ऑफिस किस लिए चाहिए? जबकि हकीकत ये है कि शुरू से ही यह अखबार कांग्रेस की नीतियों का प्रचार का मुख्य स्रोत था, इसलिए इसका प्रसार ज़्यादा बढ़ा नहीं, क्योंकि कांग्रेस का मुखपत्र होने के नाते यह अखबार सिर्फ कांग्रेस के पक्ष की ही खबरें छापता था, इसलिए लोगों ने इस अखबार को पढ़ना बंद कर दिया। और जाहिर सी बात है कि जब अखबार लोग पढ़ेंगे नहीं तो उसे घाटा होगा ही, जिसके चलते इस पर गंभीर आर्थिक संकट आ गया और हालात इतने खराब हो गए कि वर्ष 2008 में इसका प्रकाशन बंद करना पड़ा। उस वक्त एजेएल पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था, हालांकि देश भर में उसकी संपत्ति तकरीबन 5000 करोड़ की थी, जिस पर मालिकाना हक के लिए धोखाबंदी की कई चालें चली गई। इस पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगे हैं और यही नेशनल हेराल्ड का इसका सबसे बड़ा मुद्दा है। कहानी नवंबर 2010 से शुरू होती है, जब गांधी परिवार ने यंग इंडियंस नाम की एक कंपनी बनाई, जिसमें सोनिया गांधी के 38% शेयर थे, राहुल गांधी के 38% शेयर थे और बाकी 24% शेयर में गांधी परिवार के करीबी सैम पित्रोद और सुमन दुबे तथा कांग्रेस पार्टी के महासचिव जॉर्ज फर्नांडिस और कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा शामिल हैं। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वास्तव में यह कांग्रेस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही थी, क्योंकि कंपनी के सारे शेयर कांग्रेस पार्टी के ही पास थे। अब देखने वाली बात यह है कि यंग इंडियन कंपनी ने ऐसा क्या किया जो 5000 करोड़ की एजेएल कंपनी पर यंग इंडियन का मालिकाना हक हो गया। यहां से साजिशों की परतें खुलना शुरू होती हैं, यानी धोखा धड़ी की बातें सामने आती हैं। अस्तित्व में आने के अगले महीने ही यंग इंडियन कंपनी ने एजेएल कंपनी को अधिग्रहण करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। यंग इंडियन कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने एक प्रस्ताव पारित किया और एजेएल के चेयरमैन से इस मामले में बातचीत करने के लिए अपने ही एक डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी और कहा गया कि वह एजेएल कंपनी से बात करे कि हमारी कंपनी एजेएल को कर्ज को अदा करने की जिम्मेदारी लेती है, यानी यंग इंडिया कंपनी यह जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है कि वो एजेएल का कर्ज उतार देगी। यह बात करने के लिए उन्होंने अपने एक डायरेक्टर को जिम्मेदारी दी। एजेएल के चेयरमैन से बातचीत होने के बाद यंग इंडिया कंपनी ने फिर कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष से 90 करोड़ रुपए लेने की बात शुरू की, जो कि उन्हें एजेएल की कंपनी को लोन चुकाने के लिए चाहिए था। यह देखने और सुनने में बिल्कुल नॉर्मल लगता है कि एक कंपनी के डायरेक्टर ने दूसरी कंपनी के चेयरमैन से बात करके कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ का लोन लेकर उसकी सहायता की। यहाँ बिल्कुल साफ लगता है, लेकिन दिलचस्प बात तब सामने आती है जब हम इन व्यक्तियों को नाम से संबोधित करेंगे, जो इस प्रकार हैं। यंग इंडियन कंपनी के डायरेक्टर मोतीलाल वोरा ने एजेएल कंपनी के चेयरमैन मोतीलाल वोरा से बात की। फिर यंग इंडिया के डायरेक्टर ने कांग्रेस पार्टी के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा से 90 करोड़ रुपए का लोन लिया। यानी तीनों जगह एक ही व्यक्ति है। कहने का मतलब, यंग इंडियन का प्रस्ताव लाने वाले, एजेएल की तरफ से हाँ करने वाले और कांग्रेस पार्टी की तरफ से 90 करोड़ का लोन देने वाले एक ही व्यक्ति हैं, और वो हैं मोतीलाल वोरा। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है, इससे बड़ा फ्रॉड क्या हो सकता है। बाद में एजेएल के 10-10 रुपए के 9 करोड़ शेयर यंग इंडियंस कंपनी को दे दिए गए, क्योंकि यंग इंडियन कंपनी ने कांग्रेस को लोन चुकाना था, इसलिए बदले में एजेएल ने अपने शेयर उनको 90 करोड़ के शेयर उनको दे दिए। परंतु यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि 90 करोड़ शेयर देने के बाद यंग इंडिया कंपनी के पास 99% शेयर एजेएल के आ चुके थे। यानी कह सकते हैं कि एजेएल का पूरा शेयर्स यंग इंडिया कंपनी पे आ गया। सिर्फ 90 करोड़ रुपए का लोन देकर उसने 5000 करोड़ की कंपनी का स्वामित्व पा लिया। बाद में यह बात और दिलचस्प बनती है कि इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने यंग इंडियंस को दिया हुआ 90 करोड़ का लोन भी माफ कर दिया। यानी यंग इंडियंस को, जिसकी कुल एसेट्स मात्र 5 लाख रुपए थी, मुफ्त में 5000 करोड़ रुपए की कंपनी का स्वामित्व मिल गया और उसके लिए उसे सिर्फ 50 लाख रुपए खर्च करने पड़े। जी हाँ, सिर्फ 50 लाख रुपए, जो कि स्टैंप और गारंटी और कंपनी के बीच में जो लेन देन हुआ उसके कागजात वगैरह तैयार करने के लिए ज़रूरी था। तो मात्र 50 लाख रुपए खर्च करके 5 लाख के स्वामित्व वाली यंग इंडिया कंपनी 5000 करोड़ की माल बन गई। ठीक उसी कहावत के अनुकूल कि हींग लगी न फिटकरी रंग चोखा, मतलब सब कुछ मुफ्त में मिल जाना और जब कानूनी कार्यवाही हो तो यह कह देना कि सरकार बदले की भावना से काम कर रही है, राजनीतिक षड्यंत्र रच रही है, पल्ला झाड़ लेना बहुत आसान है। वैसे आजकल यह बात आम हो गई है कि किसी भी नेता के खिलाफ जब कोई भ्रष्टाचार का मामला उठता है तो बेखौफ होकर कहता है कि जांच करवा लो, परंतु जब जांच में उनके खिलाफ कोई आरोप सिद्ध हो जाता है, अदालत उनके खिलाफ कोई फैसला देती है, तो बड़े आराम से वो ये राजनीतिक दुष्प्रचार कहकर खुद को ईमानदार साबित करने की कोशिश करते हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों ही दिल्ली की निचली अदालत से जमानत पर हैं। दोनों पर धोखे से नेशनल हेराल्ड की, या कहें कि देश की हजारों करोड़ की संपत्ति हड़पने का आरोप है। हालांकि जब बात काफ़ी आगे बढ़ गई तो कांग्रेस पार्टी ने 2017 में दोबारा यह अखबार शुरू कर दिया, या कहें कि कोर्ट में यह दिखाने के लिए कि अभी भी यह अखबार चल रहा है, मजबूरी में इसे शुरू करना पड़ा। उधर एजेएल ने कहा कि वर्ष 2016 में वेब संस्करण शुरू किया गया था, अप्रैल 2018 तक सरकार शांत रही, फिर निरीक्षण के लिए नोटिस भेज दिया। यानी अभी भी अपनी चोरी को छुपाकर, इसे महज एक चुनावी मुद्दा बताकर देश को गुमराह करना कांग्रेस की सोची समझी राजनीति दिखाई दे रही है। प्रॉपर्टी हड़पने का यह केस दिल्ली तक ही सीमित नहीं है। बता दें कि कांग्रेस के मालिकाना हक वाले अखबार नेशनल हेराल्ड के लिए मुंबई के बांद्रा पूर्व में प्राइम लोकेशन पर वर्ष 1983 में मेसर्स एसोसिएट जर्नल्स लिमिटेड कंपनी को सरकार ने 3500 वर्ग मीटर की जमीन भी अखबार, नेहरू लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर चलाने के लिए दी थी। हालांकि इस जमीन पर 29 वर्षों तक किसी भी तरह का निर्माण नहीं किया गया। एक आरटीआई के माध्यम से जब यह मामला प्रकाश में आया तो राज्य में आई बीजेपी सरकार ने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी गौतम चटर्जी को इस मामले की जाँच का जिम्मा सौंपा। इस जमीन के अलॉटमेंट और इस्तेमाल में प्रमुख रूप से 8 गड़बड़ियां सामने आई, जो इस प्रकार हैं। रिहायशी जमीन में व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए जमीन देना। नंबर 2, अवैध तरीके से कंपनी के 2,70,00,000 ब्याज को माफ कर देना। नंबर 3, 100% कमर्शियल उपयोग के अनुमति देना। नंबर 4, केवल 10% रेट पर जमीन देना। नंबर 5, जब 29 वर्षों तक इस जमीन पर कोई कार्य नहीं किया गया फिर भी जमीन को वापस जब्त नहीं करना, ये 5वां गड़बड़ी सामने आई। नंबर 6 पे लैंड रेवेन्यू के कोड को उल्लंघन करना। 7 नंबर पे भूमि का राजस्व नहीं भरना यानी प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरना। और 8वें नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण, प्रॉपर्टी को फ्री होल्ड दिखाई जाना यानी जो सरकार ने लीज पर दिया उसको कंपनी का फ्री होल्ड जमीन कागजों में दिखाना। ये 8 तरह की गड़बड़ियाँ थी जो बॉम्बे वाली लोकेशन पर कांग्रेस को सामना करना पड़ रहा है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर चल रहे नेशनल हेराल्ड केस को मोदी सरकार की राजनीतिक साजिश बताते हुए मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम ने मेट्रो सिनेमा से आज़ाद सिनेमा तक मोर्चा निकाला। गौरतलब है इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सांसदों ने पिछले एक हफ्ते से संसद के दोनों सदनों में हंगामा कर रखा है। नेशनल हेराल्ड केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनिया गांधी और राहुल गांधी को समन जारी कर उन्हें कोर्ट में हाजिर होने को कहा है। मुंबई में पहली बार इसे लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। इस दौरान मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए निरुपम ने कहा है कि मोदी सरकार राजनीतिक दुर्भावना के तहत काम कर रही है, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पूरी तरह निर्दोष हैं और सिर्फ बदले की भावना के तहत सोनिया गांधी और राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड केस फंसाया जा रहा है। निरुपम ने कहा कि यदि सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर कोई कार्रवाई की गई तो कांग्रेस देश भर में आंदोलन करेगी। यानी साफ शब्दों में यह धमकी दी जा रही है कि भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यदि कार्रवाई की तो हम देश भर में आंदोलन करेंगे, ऐसा मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष संजय निरुपम का कहना है। उधर हरियाणा सरकार ने भी लंबे मंथन के बाद नेशनल हेराल्ड से जुड़ी कंपनी एजेएल को पंचकुला में बेशकीमती प्लॉट अलॉटमेंट का मामला सीबीआई को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने शुक्रवार को इसकी पुष्टि कर दी है। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ प्रदेश की बीजेपी सरकार का यह एक और घेराबंदी के रूप में देखी जा रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले में बीजेपी सरकार पर पलटवार कर दिया है। उन्होंने सरकार द्वारा अपने मामले में विजिलेंस द्वारा एफआईआर पर अपनी टिप्पणी में कहा कि राजनीतिक द्वेष के चलते हुए उन पर मामला दर्ज किया गया है, वरना वो बिल्कुल साफ हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार बदले और बदली की सरकार है। उल्लेखनीय है कि विजिलेंस ब्यूरो ने हाल में मामले में हुड्डा के पूर्व प्रशासक और 4 अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह मामला वर्ष 2005 का है जब एजेएल कंपनी को पंचकुला में प्लॉट अलॉट किया गया था। आरोप है कि कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को नज़रअंदाज किया गया था। उस समय हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री होने के नाते भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी हुड्डा के मुख्य प्रशासक भी थे। उधर कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि हुड्डा ने सभी नियमों को ताक पर रखकर अपने लॉ विभाग के और अधिकारियों की सलाह ताक पर रखकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को जमीन अलॉट कर दी। वैसे हैरानगी की बात यह भी है कि जब साफ लिखा है ये जमीन रीअलॉट नहीं की जा सकती तब भी पंचकुला के प्राइम इलाके में जहां औसतन कीमत 4 से 5 लाख रुपए वर्ग गज है उस जमीन को मात्र 90 रुपये गज के हिसाब से दे दिया गया। आप देखिए 4 लाख रुपए गज की जमीन को 90 रुपये गज में दे दिया गया और बाद में कहते हैं कि हम ईमानदार हैं, हमने कोई गलत काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का जन्म ही देश को लूटने के लिए हुआ है। विज ने कहा विजिलेंस की जांच के बाद ही कार्रवाई होगी, वह दिन दूर नहीं जब हुड्डा के चहेते उनसे मिलने जेल में जाया करेंगे। अंत में यही कहूंगा कि यदि आपका दामन साफ है तो डरने की क्या जरूरत है, परंतु यदि कहीं भ्रष्टाचार का मामला है तो आज नहीं तो कल सच सामने आ ही जाएगा, क्योंकि देश का कानून सबके लिए बराबर है। चलिए दोस्तों, अगले हफ्ते फिर किसी चर्चित विषय पर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब,
बाय बाय
एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।